Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
उस समय भी आप मना करते हैं कि नहीं? आपका पेट भर गया, लेकिन आपको लगता है कि चलो और एक रोटी खा लेते हैं, बहुत अच्छी सब्जी बनी, और उस समय मना करते हैं कि नहीं? आप करते हैं, लेकिन उस समय मना करने का भाव अलग होता है। और सचमुच आपका पेट भर गया है, सचमुच आप एक ग्रास भी आप नहीं खा सकते, उस समय भी आप मना करते हैं, तो उस समय मना करने का भाव कैसा होता है? बहुत अलग। आपको एक रोटी खाना है और आप मना भी करोगे तो बोले नहीं नहीं नहीं, आपका हाथ जो है ना थोड़ा थाली के ऊपर नहीं होता, ऐसे होता है। आप इधर ऐसे ऐसे करोगे, थाली बीच में और आप हाथ यू, भैया बस 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 पेट, आपको मालूम है एक रोटी लेना है, लेकिन उस समय भी मना करते हैं। माने उस मना में भी स्वीकृति होती है, उस मना में भी स्वीकृति से आदमी डाल देता है, सामने वाला भी समझ लेता है चलो डाल दिया, लेकिन आपका पेट भर गया, पूरा पूरा भर गया है, अब आप एक ग्रास भी नहीं खा सकते हैं, और आपका व्रत है कि थाली में छोड़ना नहीं, उस समय आप मना करते हैं तो कैसे करते हैं? अरे आप थाली पर ही पसर जाते हैं, आप थाली पकड़ लेंगे, भैया बोलेंगे बिल्कुल नहीं तो नहीं, और डाल दिया तो आप गुस्सा भी हो सकते हैं, अरे क्या क्या कर रहे हैं? आप गुस्सा हो जाए, बहुत गुस्सा हो जाए, सामने वाला कितना भी आपका प्रेमी आदमी हो, यदि भूख ना हो आपकी तो आपको गुस्सा आएगा कि क्या कर रहे जबरदस्ती है? और ये भोजन ऐसी चीज है ना जबरदस्ती, ये आपको खाना है, तकलीफ होगी तो भाई आपको झेलना है ना, आपको कोई जबरदस्ती कपड़े दे तो कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, क्या तकलीफ है? कितना भी कपड़े दे, पहना दे, कोई भी चीज आपको दे बाहर की, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं, लेकिन आप दो रोटी ज्यादा खाना हो तो बहुत मुश्किल है। आपको पूर्ण तृप्ति होने के बाद जब आप अस्वीकार करते हैं ना, तो मन से अस्वीकार करते हैं और एकदम झटक देते, भैया नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं, समझ में आया ना? आज बालक नचिकेता भी मन से झटक रहे हैं, तवैव वाहा तव नृत्य गीते, ये तुम्हारे है जो वाहा नृत्य गीत संगीत भोग ऐश्वर्य की चीजें जो आप देना चाहते हो ना, बोले मत दो, ऐसा नहीं बोला है, बोले तुम अपने पास रख लो, ये तो बहुत बहुत वैरागी की बात हुई, बोले तुम अपने पास रख लो, हमको नहीं चाहिए, ये पूर्ण वैराग्य, मैंने संसार के प्रति पूर्ण वैराग्य का द्योतन किया, बोले हमको नहीं चाहिए, तुम अपने पास रख लो, ये भैया आप भोग भोगो, बोले इन विषयों से हमको क्यों फंसाते हो? अब आगे और विश्लेषण करने हैं, अपने भीतर के विवेक को, वैराग्य मूलक विवेक को और प्रकट करने हैं। न वित्ते न तर्पणियो मनुष्यो लक्ष्यामहे वित्त मद्राक्ष चेत्वा जीविष्यामो यावत दिश्यसि त्वम् वरस्तु में वर नीय स एवा। आप मुझे जो चीजें देना चाहते हैं ना, धन संपदा आदि, ये सारी चीजें धनमूलक हैं, आप जो भी चीजें देना चाहते हैं वो सारी चीजें धनमूलक हैं, धन होगा तो आदमी मकान खरीद लेगा, धन होगा तो आदमी पशुवादी खरीद लेगा, वस्त्र खरीद लेगा, भोजन खरीद लेगा, लेकिन कहां तक? न वित्ते न तर्पणी हो मनुष्य, आप सबसे तृप्त हो सकते हैं लेकिन धन से तृप्त नहीं हो सकते हैं। आपको कितना मिलेगा तो आप तृप्त होंगे? आदमी सोचता है एक लाख मिल जाए तो बहुत अच्छा, मिल गए तृप्ति हुई, आदमी सोच दो मिल जाए, दो मिल गए तो चार, चार मिले तो बीस, आपको दुनिया की सारी संपत्ति भी मिल जाए तब भी आप सोचेंगे कि मंगल ग्रह की मिल जाए तो अच्छा है, पृथ्वी की सारी संपत्ति आपको मिल गई तो आप क्या सोचेंगे? अरे मंगल की मिल जाए, मंगल मिल गया तो वो सोचेंगे बुद्ध की मिल जाए, इसलिए कहते हैं ना तर्पणीय मनुष्य, धन से आदमी कभी तृप्त नहीं होता है। और यहां पर वित्त शब्द का प्रयोग किया है, ये बड़ा गहरा शब्द है, यहां धन के लिए वित्त शब्द का प्रयोग किया है और ये वित्त शब्द जो है ना ये भूतकाल के अर्थ में प्रत्यय लगाकर के शब्द बनता है। विद्री लाभे धातु से भूतकाल के त प्रत्यय होकर के वित्त शब्द बनता है और इसका अर्थ होता है जो हमेशा भूतकाल में रहता हो उसको बोलते हैं वित्त। आप ध्यान देना, हमारे पास धन कभी वर्तमान में नहीं होता है। आप जो भी पूंजी आपके पास आती है ना तो वो पूंजी रहती है कि वर्तमान में आती है? आपने बैंक में डाल दिया एफडी बना के, आप उसको तोड़ करके आप खाना चाहोगे कि वैसी पड़ी रहे? आप क्या चाहोगे? आप दान के प्रति आदमी संकलन की मनोवृत्ति रखता है। इसके लिए मैं आपको एक दृष्टांत सुना देता हूं, बड़ा सुंदर। रामतीर्थ ने अपने ग्रंथों में इसका उल्लेख किया है। एक कोई व्यक्ति था और वो व्यक्ति बड़ा गरीब था, रिक्शा चला के अपना जीवन यापन करता था, एक झोपड़े में रहता था और उसी के बगल में बहुत बड़ा बंगला था और उस बंगले में बहुत करोड़पति आदमी था। एक महात्मा जी आते थे उनके पास, उनके गुरु जी उस आस बंगले में रहते थे, लेकिन सेठ जी को कभी नींद नहीं आती थी। महात्मा जी के पास बहुत सारा सत्संग करते हैं, अपना दुखड़ा रोते हैं। एक दिन छत के ऊपर बैठे थे और अचानक सेठ जी की दृष्टि गई उस रिक्शा वाले के ऊपर और उन्होंने महात्मा जी के पास बोला कि महात्मा जी, ये रिक्शा वाला कितना भाग्यशाली है, ये सूर्यास्त के समय यहां आता है, दिन भर रिक्शा चलाता है और मियां बीबी बैठकर रोटी बनाते हैं, खाता है और बोले वहीं खटिया बिछा के सो जाता है सुबह सूर्योदय तक, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक, और उसको न मच्छरदानी की जरूरत है और किसी चीज की खराटे की नहीं, सोता है। और मेरे पास सारी चीजें हैं लेकिन नींद नहीं है, बहुत अच्छे बिछौने, मच्छर नहीं, हवा पंखे सब कुछ है, लेकिन मुझे क्या नहीं आती? नींद नहीं आती है। और ये सब हम लोगों की समस्या है, ये कहानी की समस्या, कहानी की बात नहीं, हम सबके जीवन की बात है। सब कुछ है लेकिन क्या नहीं है? नींद नहीं है, आराम नहीं है, तारे गिनते रहते हैं, नींद नहीं आती तो फिर चैनल खोल लेते हैं, फिर पत्रिकाएं पढ़ते हैं, उठपटांग दिमाग चलता है, परेशान हो जाते हैं, स्वस्थ नींद नहीं है। और नींद स्वस्थ होना तो आप सब कुछ सह लोगे। आपको नींद आए तो आप जीवन की सारी चुनौतियों को आप स्वीकार कर लोगे, क्योंकि आप मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे। और आपको नींद यदि नहीं आए ना तो आप कैसे संघर्ष करोगे? आपका दिन बहुत बुरा बीतेगा यदि आप रात्रि में अच्छी तरह से शयन नहीं करोगे। महात्मा जी ने कहा कि सब कुछ है लेकिन नींद नहीं, अब मैं क्या करूं? महात्मा जी ने कहा कि त्याग करो त्याग करो तो तुमको नींद आएगी। अब वो बात समझ में नहीं आ रही थी, भी त्याग करो, बोले त्याग करने से नींद का क्या संबंध? महात्मा जी ने कहा चलो मैं तुमको दृष्टांत से उदाहरण देकर के समझा देता हूं। महात्मा जी ने कहा कि तुम 99 रुपए एक बैग में डालो और नीचे गिरा दो, उसको मालूम न पड़े कि तुमसे तुम्हारे गिरे पड़े हैं। वो आदमी सो रहा था बेचारा रात में, वो 99 रुपए बैग में भर के सेठ जी ने वहां नीचे गिरा दिए। सुबह हुई और उस आदमी के हाथ में पुराने जमाने की बात है, 99 रुपए भी बहुत हो जाते थे, 99 रुपए में सारा संसार चल सकता था, एक दिन नहीं वर्षों तक। अब वो 99 रुपए मिले, बड़ा खुश हुआ वो, और आज सेठ जी को भी बहुत संतोष था कि गरीब आदमी को हमने इतना दिया। देखो त्याग के आनंद का हमको पता नहीं होता है, हमें आसक्ति के आनंद का पता है लेकिन त्याग के आनंद का पता नहीं है, मिलने के आनंद का पता है लेकिन नहीं मिलने के आनंद का पता नहीं है, लेने के आनंद का पता है लेकिन देने में क्या आनंद होता है उसका पता नहीं है, और लेने की अपेक्षा देने में ज्यादा आनंद है। आपको मालूम हो जाए बस, आज पहली बार सेठ जी को मालूम पड़ा कि देने में भी कितना आनंद है, प्रसन्न हुए, सोचे इसका जीवन स्तर बढ़ेगा, ये आज इसको इतना रुपया मिला तो आज बढ़िया बढ़िया भोजन बना के खाएगा, कपड़े खरीदेगा। लेकिन आश्चर्य की बात, वो रिक्शा चलाने के लिए तो गया, लेकिन संध्या के समय प्रतिदिन चूल्हा जलता था, धुआं उठता था, और दोनों बैठ करके भोजन करते थे बड़े आराम से और सो जाते थे। ऊपर से सेठ जी देखे रहे थे, महात्मा जी भी देख रहे थे, वो क्या करेगा, वो पैसा मिला तो क्या करेगा। लेकिन आश्चर्य, आज चूल्हा नहीं जला, आज धुआं नहीं उठा, और दोनों पत्नी पति सिर पर हाथ रखकर बैठे चिंता कर रहे, क्या हुआ, सूर्यास्त हुआ, 7 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, और वो बैठे हैं और चूल्हा ही नहीं जला, दोनों भूखे हैं। महात्मा जी ने कहा, चलो सेठ जी देख लेते हैं बात क्या है, आज चूल्हा क्यों नहीं जला। दोनों नीचे उतरे, महात्मा जी और सेठ जी उस व्यक्ति के पास पहुंचे, रिक्शा वाले के पास। उस आदमी ने स्वागत किया, सेठ जी ने पूछा, महात्मा जी ने पूछा कि कहो भाई आज बात क्या है, प्रतिदिन तुम चूल्हा जलाते थे, धुआं उठता था, तुम लोग भोजन करते, आज क्या हुआ, आज इतना चिंतित क्यों हो। वो रिक्शा वाला भी बड़ा ईमानदार था, पुराने जमाने का आदमी, आज का होता तो छिपा देता। उन्होंने कहा कि रात्रि के समय भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई, बहुत बड़ी कृपा हुई, भगवान ने एक झोली में भर के 99 रूपये हमको भेजे, बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो 99 हैं, 100 नहीं है, वो 99 हैं, 100 नहीं है, और हम चाहते हैं कि वो 100 कैसे बने, और इसलिए निर्णय किया कि अब हम कुछ दिन भूखे रहेंगे और उसको बचा के पैसा 100 बना लेंगे। अब ये हम लोगों की कहानी है नारायणी, कहानी जो है ना, ये 99 का चक्कर आप सुनते हो ना, इसी कहानी से निकला हुआ है। आप 100 करने के चक्कर में बने रहते हैं, आप 99 पर संतुष्ट हो क्या? हम 99 पर संतुष्ट नहीं है, हम उसको 100 बनाने के चक्कर में, और 100 होने के बाद भी 100 पर संतुष्ट हैं, 200 बनाने के चक्कर में, और 200 आ जाए तो 500 बनाने के चक्कर में। इसलिए बालक नचिकेता कहते कि न तर्पणीयो मनुष्यो, धान से कभी कोई तृप्त नहीं होता है। एक बार मैं हरिद्वार में मां आनंदमय आश्रम में भागवत की कथा कर रहा था, कथा के बीच में एक माता आ गई, बहुत श्रद्धावान संपन्न परिवार से, उन्होंने कहा कि महाराज मैं भागवत की कथा करना चाहती हूं। उन्होंने तारीख भी ली, निश्चित हुआ, और उसके बाद फिर उन्होंने न मुझे फोन किया न कुछ, कथा नहीं हो पाई। फिर दूसरे साल में गया और जब कथा होने लगी, वो माई कथा के बाद मेरे पास आई और उन्होंने क्षमा मांगा, उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपकी कथा नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पास सब कुछ है, बोले पैसों की कमी नहीं है, लेकिन बोली मैं बहुत कंजूस हूं और आपकी कथा में 2-3 लाख रूपये खर्च हो जाएंगे। बोले 2-3 लाख खर्च होंगे? बोले मेरा दिल बड़े धड़क रहा है। और बोले मुझे ये भी मालूम है कि मेरे 90 साल की उम्र है अभी, और जो पैसा पीछे है बोले वो कोई दूसरा ही खा जाएगा, लेकिन बोले मैं कैसे खर्च करूं, बोले मैं बहुत कंजूस हूं। बोले समझ गए कि नहीं, दान के साथ अटैचमेंट, आसक्ति आपको वहीं बांध देती है, वहीं अटका देती है। आपका जीवन छोटा होता है, बड़ा नहीं होता, इसलिए उपयोग, इसलिए कहते हैं कि आपके पास कितना भी धन आए नारायण, वो धन आपके जीवन में पूर्णता, वो धन आपके जीवन में संतोष देने में समर्थ नहीं है। न तर्पणीयो मनुष्यो, यहां जो बालक नचिकेता कह रहे हैं ना, आपको धन के प्रति तिरस्कार की भावना रखो इसलिए नहीं कह रहे हैं, माने आपको आसक्ति नहीं रखना है। आज यहां आसक्ति के निषेध में तात्पर्य है, धन के निषेध में तात्पर्य नहीं है। नहीं तो ऐसा नहीं कि प्रवचन सुनने के बाद आप जाके जो भी है पैसा वैसा इधर उधर कर दे आप। यहां नचिकेता कहना चाहते कि आपकी आसक्ति नहीं होना चाहिए उसमें, आपकी ऐसी आसक्ति ना हो कि उसका उपयोग ना हो। आप अच्छे कामों में लगाते समय आपका मन वहां दुविधा में न फंस जाए। न तर्पणीय मनुष्यो लप्स्यामहे वित्त मद्राक्ष चेत्वा। अब ये कह रहे हैं कि जब आप मिल गए हमें, गुरु मिला, अब इससे बड़ी क्या चीज है। आपके जैसे गुरु हमें मिले, बस बस बस, आपने हमने सब कुछ पा लिया है। अब हमें धन की आवश्यकता नहीं है, गुरु मिले और सर्वोच्च चीज हमारे जीवन में वही है। जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वम् वरस्तु मे वरणीय स एव। आप जब तक चाहेंगे तब तक हम जीवित तो रहेंगे ही, माने जब तक समय है तब तक जीवित रहेंगे। उसमें एक क्षण भी कम न आप कर सकते हैं और न कोई अन्य। नारायणी बड़ी गहरी बात बोल दी उन्होंने, आपका जितना जीवन है ना उतना जीवन है, उसको कोई कम कर सकता है? आपकी 50 साल की उम्र है, 100 साल की उम्र है, आप 100 साल तक जिएंगे? जब तक आपका जीवन है तब तक आप जिएंगे, उसमें आपको कोई कमी नहीं कर सकता है, कोई कम नहीं कर सकता है। आप कितना भी कोशिश करो मरने की, मरने की कोशिश करो, पहली बात आप करोगे ही नहीं। आपको 100 साल तक जीना है ना, तो आप करोगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करोगे। और कोशिश कर भी लोगे तो भी आप बचोगे, क्योंकि आपके समय आया नहीं, मरने का समय नहीं आया। और मरने का समय आ गया तो, मरने का समय आ गया तो नहीं बचोगे। एक बार एक व्यक्ति के जन्म पत्रिका में लिखा था, ये व्यक्ति अमुक तारीख को अमुक समय में रेगिस्तान जहां पानी ना हो कुछ ना हो ऐसे जगह पर जाके मरेगा, और बिल्कुल अभी बस 10 घंटे बाकी थे, 10 घंटे बाकी थे मरना था। और वो व्यक्ति हिंदुस्तान में था, रेगिस्तान में नहीं था, बहुत अच्छी जगह पर था। अब वो कैसे मरेगा, कैसे मरेगा? उसको एक ज्योतिषी मिला और ज्योतिषी ने कहा कि भैया तुम मरने वाले हो आज, और केवल 10 घंटे बाकी हैं, केवल 10 घंटे बाकी हैं। बोले कैसे बचूं? अरे बोले भागो यहां से, बोले तुमको बचना है, बोले भागो, बहुत दूर चले जाओ। बोले घोड़े पर सवार हुआ वो आदमी, घोड़ा दौड़ता दौड़ता दौड़ाता दौड़ाता रेगिस्तान में पहुंच गया, वहां मृत्यु थी उसकी। और वहां मृत्यु ने स्वागत किया, जब मरने लगा तो मृत्यु ने कहा कि धन्य हो तुम, तुमको ऐसा ज्योतिषी मिला। बोले वो ज्योतिषी ने यहां पहुंचा दिया तुमको, तुमको मरना था यहां, इसलिए गलत रास्ता बताने वाला आपको मिल जाएगा, जान देना। आपको आप इधर जा रहे हैं और मरना आपको इधर है, आप इधर जाएंगे ना तो आप बचेंगे, तो कोई रास्ता बता देगा गलत, बोले इधर जाओ, मरना है, टांग फिसल जाएगी, कुछ नहीं। मृत्यु का समय आया वो मृत्यु निमित्त बना लेगी, मरने का समय आया तो मृत्यु अपने आप उसका निमित्त बना लेगी। लोग बोलते हैं ना, आदमी मर गया, कैसे मरा? अरे बोले खाते खाते मर गया, बोले ग्रास अटक गया, ग्रास अटक के मरता है क्या आदमी? मर गया, पानी पीते पीते मर गया, कुछ भी बहाना, मृत्यु बहाना बना लेती है, निमित्त बना लेती है। इसलिए नारायण यहां पर कह रहे हैं यावदिष्यसि त्वम, जब तक मृत्यु चाहेगी, जब तक समय नहीं पूरा होगा तब तक तो हम जीवन में रहेंगे, उसको कौन छीन सकता है? इसलिए जीवन को क्यों मांगे हम? बालक नचिकेता को आचार्य यम ने कहा था कि आप जीवन मांगो, क्या मांगो? लंबा जीवन मांगो, आपको जब तक जीना है तब तक आप जीने की बात मांगो। बालक नचिकेता ने कहा कितनी लंबी? हम लंबा जीवन मांगे तो कितना लंबा? और अकेले का जीवन लंबा हो और आपके सारे लोग सारे लोग मर गए तो आप क्या करोगे? आप अकेले बूढ़े और मान लो आप 1000 साल तक जी रहे हो, हाँ, जिससे प्रेम कर रहे थे वो पत्नी चली जाएगी, फिर क्या करोगे? हाँ, आपके बहुत प्रियतम लोग सरकते जाएंगे और बाद में वो जो बाकी के बचे हुए लोग भी आपको नमस्ते करेंगे, भैया बोले कब तक रहोगे आप? आप बहुत लंबे जी रहे हैं, तो समस्या है कि समाधान है? लंबा जीवन समाधान है कि समस्या है? समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। लोग बोलते भी हैं महाराज, ये हमको भी पूछते हैं कि महाराज इनकी उम्र कितनी है? अब पूछते हैं माता पिता की उम्र कितनी है, मैंने आप कब तक जिएंगे? अभी बूढ़े हो गए, अब वो सेवा करना पड़ता है, एक कमरा दिया गया है वो खाली होना है। अब ये नई जनरेशन आ रही, नई जनरेशन के लिए पुरानी जनरेशन चली जाती, जगह देती है। एक पत्ता टूटता है और उस जगह पर दूसरा पत्ता निकल आता है, और वो उस पत्ते ने अनशन कर दिया कि भैया हम नहीं हटेंगे, तो नया पत्ता कहां से आएगा? ये प्रकृति का नियम है ना, प्रकृति का नियम है। पुराना पत्ता जब पुराना हो जाता है तो उसको क्या होना होता है? उसको झड़ना होता है। सारे पत्ते पुराने झड़ जाते हैं और उस जगह पर बिल्कुल नए नए पत्ते निकल आते हैं। इसलिए मृत्यु जो है ना, ये प्रकृति का अनिवार्य सत्य है और ये होना ही है, और ये अनिवार्य सत्य ही नहीं, ये वरदान है, अभिशाप नहीं है। इसलिए बूढ़े होने के बाद लंबे से समय तक जिंदे रहना चाहिए कि मर जाना चाहिए? ये दूसरे के लिए भी अच्छा है और ये अपने लिए भी अच्छा है, ये अपने लिए भी अच्छा है। आदमी चित्रों में लपेट जाता है, आदमी है कि नहीं ये भी नहीं मालूम पड़ता है। मरणासन्न इतना, अब 100 साल का हो गया है, उसने बिस्तर पकड़ लिया है और उसके बाद भी वो भगवान से प्रार्थना करता है कि और थोड़ी उम्र लंबी करते। इसलिए शास्त्र कहता है कि नहीं, ये जीवन जितना है उतना बस उसको बिताओ जल्दी। इसलिए ये जीवन चक्र है, जन्म और मृत्यु जीवन चक्र है। जीने के लिए, जीवन के लिए मरना अनिवार्य है, मरे बिना जीवन संभव नहीं है। हाँ, मरे बिना जीवन ही संभव नहीं, जीवन चक्र समाप्त होगा। यदि मृत्यु खत्म कर दे जीवन से तो जीवन चक्र ही संभव नहीं है। ये जन्म और जीवन ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कोई जीता है तो कोई मरता है, कोई पैदा होता है तो कोई मरता है, कोई मरता है तो कोई पैदा होता है। इसलिए कहते हैं बालक नचिकेता, इसको लंबे खींचने की क्या जरूरत है, बहुत लंबा जीवन मांगने की क्या जरूरत है? आप लोगों ने वो भागवत में सुना होगा, बलराम जी महाराज के ससुर ब्रह्मलोक गए थे, ब्रह्मा जी से पूछने, रैवत ब्रह्मा जी को पूछने के लिए, बड़ा बहादुर आदमी रहा होगा वो, बड़ा ही महत्वाकांक्षी, वो चाहते थे कि इतनी मेरी बेटी बुद्धिमान सुंदर और उसको ऐसा ही सुंदर वर चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि यहां के पंडित को क्या जन्म पत्रिका दिखाए, ब्रह्मा जी को हम जन्म पत्रिका दिखा देते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, आप ब्रह्मा जी के पास गए और वहां सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंच तो नहीं रहे होंगे। ब्रह्मा जी अपने काम में थे, लोगों ने कहा कि अभी समय नहीं ब्रह्मा जी को मिलने का, थोड़े बैठो आराम करो, एक आधा घंटे के बाद ब्रह्मा जी मिलेंगे। एक घंटे के बाद ब्रह्मा जी मिल गए, जन्म पत्रिका दिखा दी, उन्होंने कहा कि अपने मैं बेटी का विवाह करना चाहता हूं और इस पृथ्वी पर कौन सा ऐसा राजकुमार है जिसके साथ मैं विवाह कर दूं? ब्रह्मा जी ने कहा कौन सा राजकुमार, दो चार लोगों के नाम बताओ। उन्होंने दो चार क्या, 10-20 लोगों के नाम बताए। तो ब्रह्मा जी ने क्या बोला मालूम है? ब्रह्मा जी ने कहा कि वो कब की बात बोल रहे हो तुम? अरे यहां ब्रह्मलोक का एक घंटा माने बीत गया, हजारों साल बीत गए पृथ्वी लोक पर, आप वहां बोले नामो निशाना नहीं, जिसका तुम नाम ले रहे हो उसका नामो निशाना नहीं और तुम्हारे, समझ में है ना? बोले उसने तो क्या करना है फिर? मुझे लगता है कि वो बेटी को भी लेके गए होंगे साथ, क्योंकि बेटी साथ नहीं ले गए होते तो पृथ्वी लोक पर बेटी रहती क्या? उन्होंने कहा कि जिस परिवार में तुम पैदा हुए अब उस परिवार का नाम लेने वाला भी कोई नहीं है, और किसी को यह भी नहीं मालूम कि कोई तुम्हारे जैसा आदमी हुआ है, ये भी जानने वाला कोई नहीं। अब रेवत ने बोला फिर मैं क्या करूं? अरे बोले अभी बलराम पैदा हो गए, कृष्ण और बलराम, अब तुम्हारा वो युग खत्म हो गया, अभी द्वापर शुरू हो गया, अब कलयुग आने वाला है। बोले तुम बलराम जी के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दो, समझ गए कि नहीं? आप लंबा जीवन भी मांगेंगे तो वो अभिशाप ही है ना, वरदान है क्या? अब वहां रेवत को बहुत खुशी हुई होगी क्या नीचे आके? अरे सब गए, खत्म हो गए नारायण। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं नहीं है ना, वरस्तु में वरस्त्रति यहा, वरस्तु में वरणीय स एवा। ये लंबी उम्र, धन संपदा आदि ये चीजें मांगने की नहीं है। बोले वही आत्मज्ञान चाहिए मुझे, वही आत्मबोध चाहिए। आज बालक नचिकेता ने इनकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया सारी चीजों को पाने की बात, और उन्होंने कहा कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, केवल आत्मज्ञान। बड़ा सुंदर ये श्लोक है 27। अब अगले श्लोकों में और भी बहुत सारी चीजें कहेंगे, क्रम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बड़ा सुंदर प्रसंग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।